इच्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरवे दीनबंधो जगत्पतिकांत राधाकांत गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णाय तदभक्ताय वैराग्य युग भक्ति रसं प्रयत्ने अपायन मानुदृष्ट कृपाम्बुदुरिज पर दुःख दुःखी सनातनस्तम श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जीव भूतले स्वयं रूपः कदा मही ददाति सपदं तवैवास्मि न जीवामि त्वया इति विद्यां राधे तं मे मां चरणं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतदुर्गं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतविहयं मुनिमानतोऽस्मि বুঝে না উল্টা কর দো कल हमने गीता के सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वगुह्यतम श्लोक की व्याख्या हम मैंने की और जिसमें हमने बतलाया था मन मना भाव तो इस श्लोक का उदाहरण के साथ मैंने बतलाया इस जगत रूपी युद्ध में ऐसा होना के साथ में और करों के साथ में वहां पर युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में मनमना भव होना कठिन था अर्जुन के लिए जैसे ऐसे हम लोगों को भी मन की वृत्तियों के साथ में युद्ध कर रहे हैं हम लोग मन चंचल है पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेनाएं और कौरवों के तरफ से 11,000 अक्षौहिणी सेनाएं हमारे विपक्ष में 11,000 अक्षौहिणी सेनाएं हैं हमारे विपक्ष में और हम अकेले हैं अर्जुन के सारथी कृष्ण थे और हमारा सारथी दुष्ट बुद्धि है विकृत बुद्धि है अर्जुन के पास में ऐसा अग्नि का दिया हुआ रथ था जो कभी न जलेगा न कभी नष्ट होगा और हमारे पास में कैसा रथ है अभी बंबई में इस रथ की गति देख करके आया, कैसी गति है। और अर्जुन के पास में गांडीव धनुष था लड़ने के लिए, हमारे पास में क्या है चीज है लड़ने के लिए, ऐसे हम असहाय दुर्बल हैं, कोई सहारा नहीं। अर्जुन के इतना सहारा था, उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा जी प्रभु ऐसा हमसे नहीं होगा, मन मना भवो, ये नहीं तुम्हारा पीछे का ना बसो, एक तो आगे चले आसो पीछे बसो, छोटे छोटे बच्चा छेले सब सामने बसो, कल से सब सामने बैठ। अर्जुन सब प्रकार का सहाय उनको था कृष्ण भगवान का, और उनके ऊपर रथ पर ध्वजा पर कौन बैठा था,
हनुमान
बैठे थे। और तब इनका मन विचलित हो गया, और हमारे इस रथ पर कोई भी सहारा नहीं, शरीर रथ है और हम आत्मा इसके रथी हैं, मन इसका सारथी है। कैसा मन, चंचल, कोई भी सहारा नहीं, कब न जाने रथ कहाँ ले करके डुबा देगा, गिर जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा शिष्यस्ते हम साधुमा त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका सब प्रकार से सहावत हूं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही हूं, सुना भी सब। अर्जुन ने कहा जी मैं नहीं कर सकता ऐसा, मन मना भाव कल सुना ना उसके संबंध में बतलाया। अर्जुन जब कहा जैसे मैं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं चित्त को कैसे लगा सकता हूं, भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन दुशासन इत्यादि कितने महारथी हमारे विपक्ष में, एक साथ में उनसे युद्ध करना है, हमारे सामने भी 6 महारथी हैं, क्या मनसो जीवा उदर उपस्थ
पाक
पाक पाद पानी पस्त, अर्थात मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, ऐसे वेग हैं, ये एक को भी हम नहीं संभाल सकते हैं, ऐसे महारथी उनको जितना विश्वामित्र जैसे लोग, नारद जी भी नहीं जीत सके उपस्थ वेग को, हथियार उन्होंने डाल दिया, नारद ने डाला जाना बंदर का मुख दे करके और उनको नचा दिया माया ने, ऐसे एक एक संभार थी। उसके बाद में कितने प्रकार के अनर्थ ऐसा नहीं, तो अर्जुन के कहने पर भगवान ने कहा अच्छा मन मना हो मद भक्तो, तू मेरा भक्त बन जाए। अर्जुन ने सोच विचार किया, क्या सोच विचार किया, भक्त होना सहज कहना है, करना बड़ा भारी कठिन है, भक्त होना बड़ा भारी कठिन है। भक्त बनने के लिए एक चीज की जरूरत विशेष रूप से है, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा ज्ञानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। कोई प्रकार की अभिलाषा मत करो, कृष्ण की भक्ति की वृद्धि हो, कृष्ण की सेवा मिले, उनके भक्तों की सेवा मिले, इसके अतिरिक्त अपने हृदय में किसी कामना का गंध मत होने दो। कामना तो बहुत दूर की बात, गंध तक ना हो, आप लोग भी सुनिए और ऐसा बनिए तब तक भक्त होंगे, और नहीं तो फिर भक्त होना भी बड़ा कठिन है। और ज्ञान कर्म आदि से आपकी वो वृत्ति अनावृत हो, आवृत न हो, बिना कर्म के आदमी नहीं रह सकता, कुछ न कुछ जरूर से कर्म करेगा। सोते समय में भी हम कर्म करते हैं, क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, करवट बदलते हैं, स्वप्न देखते हैं, ये सब तो कर्म ही है। तो बिना कर्म के नहीं कश्चित क्षण जात अतः कर्म कृत्य, बिना कर्म किए एक मोमेंट एक क्षण भी हम नहीं रह सकते। यदि कोई कहता है कि हम बिना कर्म करते रहेंगे तो वो मिथ्या
है।
कर्म तो जरूर करना पड़ेगा भाई, खाना जरूर पड़ेगा, शीत और ग्रीष्म से बचने के लिए कपड़े भी धारण करने पड़ेंगे, किंतु देखो उसे भक्ति तुम्हारी ढक न जाए। ये देखो ऐसा मत कर्म करो जी तुम्हारी भक्ति भी ढक जाए। खाने में भगवान को न भूल जाओ, भगवान के लिए खाओ, भगवान की सेवा के लिए। और ज्ञान के बिना भी हम नहीं रह सकते, ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान नहीं रहने से कहाँ पैर रखने चाहिए, पैर नहीं रखेंगे गिर जाएंगे। ज्ञान की जरूरत, किंतु उस ज्ञान और कर्म के द्वारा भक्ति ढक न जाए, ये देखना है। परोपकार इतना करने लग गए जो भरत महाराज जी जैसे हो करके भूल गए, भक्ति करने आए थे और बहुत भक्ति के उच्च सोपान पर पहुंच गए। श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव अब होने वाला था या हो रहा था, और उसी समय एक हिरण के बच्चे को उपकार की दृष्टि से उसे बचाया बाघ के मुख से और जल में डूबते हुए, और बचा कर फिर उसको दूध पिलाया, ये तो उपकार है। किंतु यह उपकार उनको तीन जन्मों के लिए ले बैठा, तीन जन्मों उनका पिता चला। इसलिए कर्म और ज्ञान तो रहेगा, भक्ति की सेविका उसे बनाओ, भक्ति की वो सेवा करें। हमारा ज्ञान और कर्म के द्वारा भक्ति की सेवा हो, ऐसा नहीं कि भक्ति की वृत्ति ही ढक जाए। इसलिए ज्ञान कर्म करेंगे। कैसे, बाजार गए हैं, सब्जी लानी है, ठाकुर जी को देनी है, अच्छी अच्छी सब्जी अच्छे अच्छे फल ला करके बनाएंगे, उसे ठाकुर जी को भोग देंगे, ठाकुर जी का प्रसाद होगा। इसके द्वारा भक्ति नहीं ढकेगी बल्कि बढ़ जाएगी। और अच्छी अच्छी चीजें हैं ले आए और खूब सुंदर रूप से उसे बनाया, देखा जे चटपटी है कि नहीं या बहुत अच्छी है या नहीं, गाजर को अच्छी तरह से देख करके ला, अशुद्ध गैया का घी ले आया गब्जृत, और उसमें हलवा खूब सुंदर बनाया, केवड़े उसमें दे दिए, और गिरी भी गड़ी, गिरी मैंने जानते हैं नारियल का टुकड़ी उसमें डाल दिए ऊपर से, और चांदी का बरक उसके ऊपर से लगा दिया। क्या मजा है इसके खाने में। बस बिगड़ गया वो कर्म के द्वारा, ये ठक गया। इसलिए ऐसा नहीं, ठाकुर जी के लिए करो तो वो ठीक है, और अपने लिए जहाँ किया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए ज्ञान कर्म तो जरूर रहेगा, नहीं तो बच नहीं सकते, किंतु ऐसे होने चाहिए। अच्छा, यदि हमने उसको बनाया और बना करके मैंने बनाया, मैंने बाजार से लाया, मैंने रुपया संग्रह किया और खाया, और खाने का फल भगवान को अर्पण कर दो, तभी कुछ ठीक है, कुछ ठीक, किंतु पूरा ठीक नहीं है। करने के बाद में मत समर्पण करो, करने के पहले ही अपने को ही समर्पण कर दो। यज्ञ अर्थात कर्मण हो, अपने कर्म यज्ञ के लिए, ये गीता का उपदेश, यज्ञ के लिए जो कुछ खाओ पियो, जप करोशी जदर्शनाशी यज्ञ होशी ददाशी तप, जब तपस्या कंते तत्पुरुष समर्पण, ये गीता का ही उपदेश है। जो कुछ भी खाओ, जहाँ भी चलते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, हवन करते हो, रसोई बनाते हो, बाग बगीचे लगाते हो, सब किसके लिए करो, अर्पण कर दो ठाकुर। जगत के लोग ऐसा ही सब करते हैं। चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं ऐसा मत करो, खबरदार फंस जाएगा, ऐसा मत करो। अपने को ठाकुर जी को समर्पण कर दो, जो मैं तुम्हारा हूं, और तब जो कुछ तू करेगा तू अपने खाएगा भी तो उसको भगवान को मिल जाएगा। पुनसार किता भक्ति नवलखन भगवती अध्यात्म मन अधित मुक्तम। ये नौ प्रकार की भक्ति करके भी यदि भगवान को अर्पण होकर के नहीं किया, पीछे से हम अर्पण करेंगे तो वो कर्म मिश्रा भक्ति हो जाएगी, शुद्धा भक्ति नहीं होगी। जगत को इस चीजों का पता नहीं है, बस यही जानते हैं कि उनको अर्पण कर देना चाहिए, किंतु इसमें कहाँ कमियां हैं शुद्ध भक्त लोग इसको समझते हैं। इसलिए पहले अपने को अर्पण करो, कर्म को अर्पण मत करो, जो कर्म करने वाला है वही अर्पित हो जाए, उनका बन जाए। जैसे बेटा है बाप का, बेटा पहले खा लेता है, छोटा सा बच्चा कुछ दे दो तो बस मुख में लगा देगा, और पिताजी की गोद में भी है खा लेता है, जब थोड़ा सा खा लेगा तो ना तो पिताजी के भी मुख में दे सकता है, ऐसे नहीं देगा, मांगने से नहीं देगा, तभी तो पिताजी प्रसन्न रहते, क्यों मारेंगे पीटेंगे भी तभी तो हम ही उसके हैं और कोई दूसरा नहीं। ऐसे हम भगवान के बन जाएं, समर्पण करके गुरु जी को, भगवान को तो न जाने कहाँ अभी हूँ, अभी गुरु ही तो हैं जो हमको भगवान के हैं ले जाएं, उनके चरणों में अपने को समर्पण करके यदि शुद्ध रूप से यदि हम भगवान की सेवा करें तो अर्पण करने की जरूरत नहीं है, क्या होगा यदि उनके हम हो जाएंगे। गोपियाँ खा रही हैं, गोपियाँ श्रृंगार कर रही हैं, कृष्ण को निवेदन नहीं करती हैं, वो किसी की पूजा उजा निवेदन नहीं करती, कोई अच्छी चीज मिल गई खाएंगे, श्रृंगार करेंगी, गहना पहन रही, ये सब कर रही है, किंतु हैं किसकी, इसलिए जो कुछ करती हैं उसे कृष्ण को आनंदित, कृष्ण बड़े आनंद हो जाते हैं, उनके खाने से कृष्ण को पहले मिल जाता है, इसलिए पहले हमको समर्पण करना चाहिए। और कृष्ण के लिए सुख के लिए सब कुछ करना चाहिए, ऐसी भक्ति होना जरा कठिन है। क्यों कठिन है, सुलभ भी है, यदि पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार कुछ हो, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार भी हो और इस जन्म में उस जन्म के संस्कार से भगवान की कृपा से वैष्णव की कृपा से वैष्णव का शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया और वैसा यदि हो गया तो शुद्ध भक्ति। अब उदाहरण के साथ में इस चीज को समझा रहा हूं कैसे, जैसे बिल्व मंगल जी का ही ले, बिल्व मंगल जी पूर्व जन्म का संस्कार था, इसलिए और किसी वेश्या के पास कुछ कर्म भी शेष था, भोग भी शेष था, पूर्व जन्म की कुछ वासनाएं रह गई थी, चिंतामणि का संग हुआ और संग होने के बाद में वो कृष्ण का ही गान करती थी और कुछ गान नहीं करती, कृष्ण संबंधी चरित्रों का लीलाओं का गान करती थी, इनका चित्त मुग्ध हो गया, संस्कार बाकी थे। और इसके बाद में जो हुआ घटना सब तो आप लोग जानते हैं, जे कैसे उस सौ को पकड़ करके उसके पास में गया, सांप पकड़ करके उसके महल में घुसा, और कैसे उसने ताना मारा, और इसके बाद में उनको वैराग्य हुआ, घर छोड़ करके आए, घर छोड़ने के बाद में 5-7 दिनों के बाद में चले जा रहे थे वृंदावन की तरफ, उधर चिंतामणि भी उनके लिए रो रही है, ये भी कृष्ण के मिलने के लिए पागल हो रहे हैं, कुएं के पास में पानी पीने के लिए आए, कोई किशोरी युवती पानी भरने आई, इनको प्यास लगी थी पानी पीने के लिए गए, ये पानी पिला दो, पानी पिलाने लगी तो पानी पिला भूल गए, उसके तरफ में ही देखते रह गए, फिर पानी पिया और उसके पीछे पीछे चल दिए। घर जाने पर पति ने पूछा जी कैसे महात्मा जी आए, तो वो जो गई आपके घर में वो कौन है, तो मेरी पत्नी है, उनको थोड़ा सा बुला दी, उनसे थोड़ी सी बात बुलाया, सरल हृदय का वो ब्राह्मण बुला लाया। और जब इनके सामने आया तो कहा जी देवी जी, अपने जो दो कांटे यहाँ के जूड़ों में खोसने के लिए है उसको हमें दे दीजिए। सोचा कि बहुत दूर से पक्षी का आ रहा है, कहीं कांटे उठे गड़ गए होंगे, कांटे निकाल लेगा, किंतु दिल में कांटा उसका गड़ा था, बात तो ठीक थी, और ये वहां तक पहुंच नहीं सकता, उस कांटे को निकालने में समर्थ नहीं थे। उसने दो कांटे लिए और आंखों, दोनों आंखों में उसे लगा, आंखें फूट गई, पुतलियों के पास में पड़ा, जब फिर कभी ये ठीक ना हो, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। ये आंखें ही संसार में आसक्ति की मूल चीज है, आदमी रूप पर आकृष्ट होता है अधिक, इसलिए पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही माया की मूर्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में बहुत सावधान किया गया, भटक जाते हैं, इसलिए आंखों को फोड़ करके चल दिए। उस समय कृष्ण के विरह में विप्रलम्ब भाव में ऐसी दशा हुई, क्योंकि समस्त इंद्रियां भगवान में ही केंद्रित हो गई, ऐसा जो कुछ चिपक जाए, और उन्हीं की चिंता करते 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 वृंदावन की तरफ में चले गए। उसमें में गड्ढे, नालियां, नदी सब, छोटा सा बालक मधुर सर से बोला, बाबा कहाँ जाएगा? वो बड़े प्रसन्न हो गए, बेटा मैं वृंदावन चलूंगा, तुम कहाँ जाएगा? बाबा मैं भी तो वृंदावन ही जाऊंगा, कहाँ रहता है? तो वृंदावन में ही रहता हूँ, इधर आ गया था किसी काम से। वृंदावन जाएगा, हमको ले चलेगा, हमारा डंडा पकड़ लेगा? बाबा जरूर पकड़ लूंगा, पकड़ने में क्या आता है, मैं डंडा पकड़ लिया, बस डंडा पकड़ लिया। और ये थोड़ी देर घूमते 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 बाबा वृंदावन में पहुंच गया। और रास्ते में क्या हुआ, उसके हृदय में से ऐसे सुंदर सुंदर उद्गार निकले जो कृष्ण के सुनने के लिए अमृत के समान है। इसको कहते हैं साधन, बिल्वमंगल साधक हैं। और कलयुग गोपी की बात बतलाई, वो सिद्धा की बातें बतलाई, मन की वृत्तियां बिना कारण ही जैसे गंगा की धारा हिमालय से निकल करके समुद्र में अपने आप पहुंच जाती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही चित्त वृत्तियां तैल धारावत अभिछिन्न गति से कृष्ण के चरणों की तरफ में प्रवाहित होने लगे, रोकने पर भी न रुके, वो तो कल बतलाया, वो सिद्धा की बातें हैं। आज हम कुछ साधन साधकों की बातें कर, इसलिए भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि में साधन बिल्व मंगल को साधक बतलाया गया ना, ये साधक है। और इसके नीचे वाले क्या हैं, हम लोग अभी हम लोग किसमें, हम साधक हैं कि नहीं है भाई? वो लोग साधक, किस चीज के साधक? हम लोग वैधि भक्ति के निम्न सोपान के साधक होने का अभिमान रखते हैं, केवल दंभ भरते हैं ने? और ये लोग सचमुच में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सख्यात्म निवेदनम ये लोग पूरा रूप में करते हैं। ये जो श्रवण कीर्तन इत्यादि जो है दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक वैधि भक्ति और एक रागानुराग, दोनों में ये काम करेंगे, किंतु दोनों में जरूर ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देना पड़ेगा, नहीं, भावना बदल जाएगी, रूप ऊपर का एक ही रहेगा किंतु अंतर की निष्ठा। इसलिए ये लोग साधन है। कैसा साधन किया है? आंखों के आंसुओं से अपने हृदय रूपी कुसुम को मिला दिया और कृष्ण के चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिया। कृष्ण बिना मांगे अपने आप उसको ले रहे हैं, उन पुष्पों को। जैसे एक तो ये बिल्ल मंगल साधन, फिर अंत में हुआ क्या? ऐसा साधन कर रहे हैं, दिन रात उसी का चिंतन, केवल चिंतन ही नहीं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, सखी के रूप में उनका प्रारंभ से ही सखी भाव था, ये सभी कुछ कर रहे हैं। तो साधन वैसा होना चाहिए। यहाँ पर कर्म और ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं, कोई भी कर्म और ज्ञान की चीज नहीं, उनके स्वस्वरूप की भावना उनके अंदर में प्रस्फुटित हो रही है और उसी के रूप में वो उनकी सेवा कर रहे हैं। किसी रागानुगा भक्त को ऐसा ही साधन करना चाहिए। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इनका ऊपर का रूप साधक का है और अंतर का रूप सिद्ध है। समझ में आ रहा है ना? ऊपर का रूप साधक का है और भीतर का रूप सिद्ध का है। कि यहाँ दुई तो साधन
सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चतुर्थ ही तद्भाव
बंगला में भी प्यार में भी अंतरे करिया भावन रात्रि दिने
राधा कृष्ण
सेवा अंत करे निष्ठ। अच्छा, भीतर में उनका अपना सिद्ध स्वरूप, तो वो हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए नहीं। ऊपर से ही भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से जिनके स्वरूप की स्फूर्ति हो जाए, तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी के अंतर की बात है। और नीचे से ऊपर से कैसा रहेगा? संख्या पूर्वक नाम गान्नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार काग विजितौ चातंत दीन औचौ राधा कृष्ण गुणस्मते मधुरिमां देव सम्मूर्त वंदे रूप सनातन रुहिदुरौषी। संख्या पूर्वक नाम, 100,000 हरि नाम करके तब पानी छूंगा, कम से कम 1008 वैष्णवों को, वैष्णवियों को, धाम को, कृष्ण संबंधी लीला स्थलियों को, लीलाओं को, सबको प्रणाम करेंगे साष्टांग, दिन रात उसी का चिंतन। महाप्रभु जी इनके गुरु थे यदुनंदन आचार्य, हर के इन्होंने इनको दीक्षा दी। दीक्षित जाने के बाद में हरिदास ठाकुर जी का इनका संग हुआ और उनके प्रभाव से हरिनाम करने लग गए। और पूर्व जन्म का संस्कार और नित्य लीला का तो है ही है, साधक जो चरित्र दिखलाते हैं हम उसी को ग्रहण कर सकते हैं, सिद्ध हम नहीं कर सकते, इसलिए साधक रूप के हम उनका वर्णन करते हैं। कैसे साधन करते? कुछ दिनों के बाद में अस्पराशी नारी किशोरी से शादी हुई, राजा के लाडे राजकुमार, शरीर भी सुकुमल, छोटी सी अवस्था 16 वर्ष की, कृष्ण के विरह में पागल हो गए, कितनी बार घर छोड़ा, घर वालों ने पकड़ लिया, नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई, उनकी सेवा की, बस किसी प्रकार से छुट्टी मिल गई, भागे घर से, रात पथ छोड़ दिया भागने का, वन पथ से चले, 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया, 15 दिन भी, 1 महीने का रास्ता 15 दिन में तय किया। 7 दिन के बाद में कहीं ग्वाले के घर में गए तो वहां से उन लोगों ने कुछ दूध पिला दिया, कहीं मुढ़ी दे दी, मुरमुरा दे दिया, कहीं सूखा चिड़वा दे दिया, कभी ले लिया कभी वो भी नहीं, रात दिन चलते 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 पुरी में पहुंचे। छोटा सुकुमार लड़का। ट्रेन नहीं, जब रिजर्वेशन बिना हम नहीं जाएंगे, रिजर्वेशन करा करके पूरा खुराक और 2-4 हज़ार पॉकेट में रुपया लेकर के तब चलेंगे वृंदावन। वृंदावन जवार न है, ये परिपाटी। वृंदावन में जाने की ये परिपाटी नहीं है, घर में सब कुछ छोड़ो, सुख को जलांजलि देकर बिना पैसे कल क्या कहेंगे इसकी भी चिंता छोड़ करके केवल कृष्ण की चिंता को लेकर के जो चलना चाहे वो तो आए, रोने के लिए आए। रघुनाथ दास गोस्वामी रोते रोते गए, महाप्रभु जी ने गले से लगा दिया। हाँ, ये तुम पैखाने के गर्त को छोड़ करके आज निकल करके तू आ गया, बस गले से लगा। और पासी में स्वरूप दामोदर बैठे थे, उनके हाथों में उनका हाथ, आज से ये तेरे सर्वस्व हैं, माता पिता गुरु भाई बंधु सभी, आज मैंने तुमको सौंप दिया, मैं निश्चिंत हो गया। भगवान ऐसे गुरु को ही सब सौंप दे। बस उस दिन से वे स्वरूप के रघु बन गए, रहने लगे। कालांतर में उनके वैराग्य की तो आप लोग सब बातें जानते हैं, कैसे खाते थे। पिता ने उनको भोजन के लिए व्यवस्था की नहीं दिया, गाय खा लेती थी, ठाकुर जी का माण अन्न सड़ जाता था, उसको धो करके पानी में सड़े हुए को निकाल करके थोड़ा सा नमक दे दिया, बस एक किलो ग्रास खा करके जीवन कटाते। कपड़े में मात्र लंगोटी, हाथ में करुआ, केवल करुआ माने मिट्टी का पात्र, बस वही सब कुछ, न लोटा न थारी न कंबलिया, कुछ भी नहीं। पूरी एक ऐसी जगह है समुद्र के किनारे, न गर्मी न शांत, वहां पर किसी प्रकार से कहीं से गुदड़ी मिल गई, राजकुमार अब गुदड़ी ओढ़ करके सोता है। दूसरों के छोड़े हुए कपड़ों से डोर कॉफिन बना करके भजन करता है, और हम लोगों को देखिए ये कैसी स्थिति। महाप्रभु चले गए 48 वर्ष की उम्र, अन्न छोड़ दिया महाप्रभु के विरह में, दिन रात रोते रहते। ये साधन है, साधन की बातें बतला रहा, ऐसा कोई साधन कहते ये साधक है। महाप्रभु चले गए तो अन्न छोड़ दिया, स्वर्ग दामोदर महाप्रभु के विरह में उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया, वो भी गोलोक वैद ब्रज में चले गए, पानी छोड़ दिया, दिन रात रोते रहे, नहीं रह सके। क्यों ना रह सके, जैसे नंद बाबा की दशा हुई, घर में कृष्ण की स्मृति हो रही है ना, कृष्ण की लाला की ये झिंगुली है माने पीताम्बर की, ये बांसुरिया है उसकी, ये बेणू है, ये मोर पंख हैं, देख देख करके तड़पती रहती थी और उनके पिताजी तड़पते रहते थे। सोचा जी ये घर में हम नहीं रहे, जमुना के किनारे जाएं। जमुना के किनारे जाते ही देखा कृष्ण के चरण चिन्हों को, भाव में विभोर हो काली अदा में के पास में पहुंचा, अरे यही पिछे के ऊपर में तो ये चढ़ करके कूदा। और स्मृतियां हृदय में आने लगे, आंख बंद कर दिए, कजी यहां नहीं रहे, गोवर्धन जाए। वहां देखा जे समस्त पेड़ मानो कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं, जहां जाए कृष्ण की स्मृति, राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन कुसुम सरोवर मानस गंगा, जहां जाए विकल हो गए उनके प्राण। फिर घर को लौट आए, ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के अस्वर्ग दामोदर के स्मृतियों को देख करके विरह में आतुर हो जाए, यहां नहीं रहे, पैदल चल दिए और चले आए वृंदावन। रूप गोस्वामी के और रघुनाथ सनातन गोस्वामी के चरणों में अपने को अर्पित कर दिया। अब समय आपका, आए थे किस लिए? आए थे जब रूप नहीं रहे, महाप्रभु नहीं रहे, स्वरूप दामोदर नहीं रहे, अब मैं नहीं रहूंगा। जाऊंगा गोवर्धन में, ब्रज में ही गोवर्धन में चढ़ करके वहीं से कूद करके
भगवान,
और नहीं तो राधा कुंड में अथाह जल है, बस रात में आधी रात में उसी में कूद जाऊंगा और राधा जी को ही प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए आए थे, विरह एक ऐसी चीज। किंतु रूप सनातन ने उनको ऐसा उनका किया जिससे कि वो भृगुपात से रह गए और राधा कुंड में उनको रहने के लिए स्थान दिया। फिर राधा कुंड का ये सब सेवा उन्होंने ही की थी। कुछ दिन चले रूप और सनातन जी भी कुछ दिनों के अंतर में महाप्रभु के विरह में न रह सक करके वो भी चले गए। अब किसके भरोसा रहे? गिरिंद्रम अजगराय, गिरिराज गोवर्धन उनके लिए अजगर बन करके मानो उसको ग्रास कर लेंगे। कुंडम कुंडायते, राधा कुंड व्याघ्र होकर के मानो उनको निगल जाएगा उनके विरह में।
जीवातुरस्य महागोष्ठम
गोष्ठ नंदगांव बरसाना इत्यादि कृष्ण की जो लीलास्थलियां जिसके लिए वो प्राण धारण कर रहे थे, आज वो भी सुन्नायितम रूप गोस्वामी के विरह में। फिर उन्होंने जल जो पी रहे थे वो जल भी छोड़ दिया प्राण धारण करने के लिए। कभी कभी चुल्लू भर मट्ठा ले लेते और यदि एक चुल्लू से कोई बेसी दे देता तो उनके लिए प्राण का संकट उपस्थित हो जाता। किसी प्रकार से क्या करते थे, क्या विलाप किया करते। राधा कुंड के किनारे धूल में लोट पोट जाते और हा राधे हे ललिते, ब्रज देव के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले कालिंदी वन्ने कुता, वो संताप सर्वतो खेदय महाबीहलौ तंदे रूपना। इस प्रकार से भजन करते थे, कैसे लोट पोट। और उस समय उनके हृदय से जो उद्गार रूपी पुष्प निकलते थे उसी की माला गूंथते थे और राधा जी के चरणों के नखों की ज्योति को राधे राधे। ऐसा यदि कोई करे तो ये साधन है राधा कृष्ण को मिलने के लिए। कर्म से स्वर्ग इत्यादि मिल जाना चुटकी बजाते ही ये संभव हो जाएगा। कोई लोग सदैव ही स्वर्ग चले जाते हैं चेष्टा करने से। बैकुंठ में भी ध्रुव शरीर ही चले गए कुछ दिनों की तपस्या से। किंतु कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ, कृष्ण की भक्ति जो है ऐसी भक्ति जो अभी कहा ये बड़ी सुदुर्लभ है, बड़ा कठिन। ऐसे ऐसी वो कुसुमांजलि बनाई, राधा जी की सेवा की प्रार्थना उसमें है कि हे राधे जी, आपके घर में झाड़ू देने के लिए मुझे कभी अवसर मिलेगा जो मैं गोपी के रूप में अपने केशों से आपकी नालियों को धोऊंगी इतर और केवड़े के जल से। हाँ, आपके चरणों में अवता लगाने का मुझे कभी भी सुअवसर मिल सकता है। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं की। ये लोग साधक हैं, साधक रूप से ये सब करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यहाँ पर विष्णु माने राधे, राधा कृष्ण का जुगल का स्मरण करना है। यहाँ पर शरणम कृष्ण की कथाएं ही उनके लिए कर्णभूषण है केवल, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहते। बैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते रघुनाथ दास गोस्वामी, बैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते। यहाँ पर कि कहीं भी कृष्ण कथा हो रही हो, राधा जी की भी कथा हो रही है विश्व में कहीं भी। मैं वृंदावन में ग्वालों के साथ में, गोपियों के साथ में सांसारिक बातों का आलाप करता रहूंगा, उनकी झूठी रोटी एक टुकड़ा भी मुख में दे लूंगा, किंतु ब्रज छोड़ करके राधा कुंड छोड़ करके मैं कदापि नहीं जा सकता। शरीर जा सकता है, हमारा प्राण नहीं जा सकता। इस प्रकार की निष्ठा होने थे ये लोग साधक। माधवेंद्रपुरी का जीवन सार्थक है। कैसा जा रहे हैं? गोवर्धन जी ने कहा, श्रीनाथ जी ने, भाई यहाँ पर मैं बहुत दिनों से पड़ा हुआ हूँ, हमारी सेवा कब करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूँ। कब कखन आसबे माधवेंद्रपुरी?
कबे आसि माधवपुरी करिबे सेवा?
करिबे सेवा, उसके लिए सेवा ललकते हैं, उनकी सेवा को पाने के लिए ये भगवान साधकों की। तो ये लोग साधक हैं, हम लोग अभी क्या है, भक्ति का पहला सोपान श्रवण कीर्तन है, किंतु इसमें एक अनिश्चिता भक्ति और निश्चिता भक्ति दो प्रकार की होती है। पहले ही इसमें हम लोग अभी अनिश्चिता भक्ति के अंतर्गत हैं, जो भी साधक है अंतर्मुख है वो भी अनिश्चिता भक्ति। अनिश्चिता माने जिसकी बुद्धि निश्चलात्मक रूप में निश्चित ही नहीं हो गई है वो अनिश्चिता ना? और किसी की निष्ठा बुद्धि हो जाए, कब होगी? अच्छे माता पिता के साथ में घर में ही रह करके भजन करो, क्योंकि माता पिता भी तो वृद्ध हो गए। अथवा सुनते हैं कि घर तो नरक कुंड है, इसको छोड़ करके आश्रम में जाकर के वनों में ही भजन करो। सोचता है जी अर्जुन, श्रीवास आचार्य और बड़े बड़े भक्त लोग, गोपियां, ये तो सभी गृहस्थ थी, इसलिए गृहस्थ रहना अच्छा। किंतु नारद जी, सुखदेव, गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि भक्त लोग, मीराबाई इत्यादि इधर भी, ये तो संसार को अंधकूप कह करके और छोड़ दिया है, इसमें भजन नहीं हो सकता है, छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ? अच्छा कुछ दिन रह लूँ, इसके बाद में मैं छोड़ दूँ? नहीं, आज ही चलना चाहिए। उधेड़ गुण में पड़ा हुआ है, निष्ठा भी नहीं है इसको, इसको भक्ति तो कर रहा है किंतु अनिश्चिता। जब ये बुद्धि निश्चलात्मक रूप में स्थिर हो जाएगी, जी मुझे कहाँ रहता तो भजन कैसे करना है, तब ये निष्ठा है। निष्ठा आने पर भी अभी अनर्थ है चार प्रकार के। यदि भक्ति करने लगेंगे, शुद्ध रूप से हरिनाम करने लगेंगे, हरि कथा सुनेंगे, प्रतिष्ठा बिनाए गुना बिना बुलाए अपने आप आएगी। भक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति मुक्तांजलि सेवते स्मान धर्म आर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी पीछे, आखिर मैं सेवा कर दूं? नहीं, देखेगा नहीं, कहे नहीं, आ जाएगी अष्ट सिद्धि नवनिधि या धन की बात क्या, साक्षात आकर के कहेंगे जी प्रभु हमारी सेवा कर। उन भक्तों की तो बात क्या है, हम ही लोग कहेंगे नहीं, हम नहीं चाहते, तुम दूर, उन लोगों की तो बात क्या। तो ये सब साधकों के यहाँ भी हाथ जोड़ करके खड़ी रहेंगी ये सब लोग। तो किसकी बात कह रहा था? अनिश्चिता भक्ति प्रारंभ। निश्चय हो जाने पर भी जब हरि नाम करेंगे, जरा थोड़ा सा मन लगा करके, अब मन लगने लग गया, थोड़ा सा निष्ठा हो गई, उसमें ये सब अनर्थ रहेंगे। पूर्व जन्म के किए हुए संस्कारों से कुछ कर्मों का फल आएगा, पाप और पुण्य का, और भक्ति का कुछ जो अभी कर रहे हैं वो कर्म मिश्रा भक्ति, औपाधि की भक्ति, सकामा भक्ति, तो उसका फल आ जाएगा। बड़े बड़े जो जिसको बड़े बड़े लोग चाहते हैं वो चीज़ें उनको नहीं मिलती, वो भोग सब उपस्थित हो जाएंगे। प्रतिष्ठा बहुत आएगी, और यदि इन प्रतिष्ठा में भोगों में आप डूब गए तो डूब गए, इनसे भी सावधान रहिए। पूर्व जन्मों के पाप से आपके ऊपर में रोग भी आ जाएंगे, और रोगों के निवारण में और कहे भगवान तगवान कुछ नहीं है बेकार का। ये साधु लोगों को भी जाना पड़ता है बम्बई और इधर उधर, और दुख भोगना पड़ना पड़ता है, इनको भी लकवा मार गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा भक्ति करके, बस डूब जाएंगे। इसलिए ये चार प्रकार के अनर्थ, भक्ति उत्थ, पाप उत्थ, सुकृति उत्थ,
दुष्कृति उत्थ
और अपराध उत्थ। और कोई यदि वैष्णव के चरणों में अज्ञान में भी यदि अपराध हो गया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। तो ये चारों प्रकार के अनर्थ रहते हैं, वो भी छोड़ देना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ जाएंगे। जब रुचि हो जाएगी तब उसको कहते हैं रुचि, उसी निष्ठा को। और रुचि होने के बाद में तब फिर आसक्ति होगी। आसक्ति होगी दो प्रकार की, रुचि भी बहुत प्रकार की है। आसक्ति में अपने भजन के प्रति पूर्ण आसक्ति रहेगी। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे समन्त्रेषी नाम्नि ब्रज्व दन्द शरणे सदादम्बं हित्वा कुरु रतिम अपूर्वम अतितरामये शान्तर्थात चतुर्भिजाते। अपने मन को ठीक करके ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे मन तुम्हारे चरणों को पकड़ करके मैं प्रार्थना, क्या गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें मेरी आसक्ति हो। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें आसक्ति हो। कृष्ण का जहाँ जहाँ जो जो गोष्ठ में लीलाएं हुई हैं, राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना साकेत, और सबसे अधिक राधा कुंड तो ही है,
गोवर्धन
राधा जी का वास स्थान जावट, राधा जी को सेवा करने के लिए कहाँ रहना पड़ेगा, जावट से दिन में आती हैं वो राधा कुंड निवास करती हैं, वहां पर जन्म। तो इन सब स्थानों में उसकी भावना रहेगी, निष्ठ आसक्ति रहेगी भजन में और भजनीय में। भजन के जो ये है श्रवण कीर्तनम इत्यादि इसमें, और भजनीय मैंने राधा कृष्ण में, और भजन मैंने श्रवण कीर्तन, दोनों में जब पूर्ण रूप से रुचि हो जाएगी परिपक्व दशा में, तो इसको कहते हैं आसक्ति। तब भगवान की कृपा से उसके हृदय